तो आज के इस विशेष प्रभात जागृति में आप सबका स्वागत है। पीवी दिशु हॉस्पिटल के अंतर्गत ये कार्यक्रम आपके लिए उपस्थित है और आप सबका बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोग आए सुबह सुबह इस कार्यक्रम में इसकी शोभा बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब मनुष्यगण, जैसे आप सब लोग, हम सब लोग मनुष्य हैं, जब मनुष्यगण एकत्र होकर भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में उनका गुणगान करते हैं, तो एक दिव्य अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसका लाभ उन सब लोगों को होता है जो लोग उस वातावरण में रहते हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप खुद ही ये शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं और खुद ही शक्ति का लाभ भी ले रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान की भक्ति का मार्ग जो है वो इतना श्रेष्ठ है कि एक तरह से वो बहुत ही उच्चतम कोटि की वस्तु है, इट इज़ द हाईएस्ट अचीवमेंट, और एक तरफ से एकदम सिंपल भी है। वो करना केवल क्या है, संघ का जो महत्व है वो कलयुग में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संघ होने से आपके अंदर जितनी भक्ति है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर बहुत भक्ति है, लेकिन छोटी मोटी जो डिवोशन है, भक्ति है, जब एकत्र होते हैं तो सबका मिलके जितनी राशि उत्पन्न होती है भक्ति की, वो दिव्य शक्ति का निर्माण करती है। और उस दिव्य शक्ति में जब हम बैठते हैं और आगे जाकर क्लास में पढ़ेंगे और यहाँ पर आगे पीछे जाएंगे, सेवा करेंगे, तो उस दिव्य वातावरण का, शक्ति का लाभ सबको होगा। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे अभी पीवी दिशु हॉस्पिटल ले लिया है, एक साल अभी पूरा होने को आएगा, हो गया ना एक साल, नहीं होगा, अभी अक्टूबर में होगा, तो यहाँ पर भी तुरंत हमने वो कार्यक्रम शुरू कर दिया। कारण क्या है कि लोगों को इस दिव्य शक्ति का लाभ होना चाहिए। हरिनाम, भगवान का नाम का जप एवं कीर्तन, इसकी इतनी महिमा है कि जिस रास्ते पर भगवान के भक्त करताल मृदंग लेकर हरिनाम करते हुए चलते हैं, उस रास्ते पर उस हरिनाम समाप्त होने के बाद भी जो भी चलेगा उनको चिरंतन काल तक उसका लाभ मिलता रहेगा। कीर्तन तो हो गया, 27 जनवरी को हो गया, समझो 27 जनवरी को इस रास्ते से यहाँ से वहाँ तक भगवान के भक्त गए हरिनाम को पुकारते हुए, लेकिन उसके बाद भी जब कीर्तन नहीं हो रहा है तभी भी उस रास्ते से जो भी गुजरेगा, जो भी वहाँ रहेगा, वो सबको उसका लाभ मिलेगा। इतनी महिमा है। न्यूयॉर्क के अंदर साल में एक बार रथ यात्रा होती है और उस रथ यात्रा में दुनिया भर के हरे कृष्ण के सन्यासी भक्त लोग आते हैं, और कई 55-56 रास्ते हैं वहाँ पर, 55th स्ट्रीट, 54th स्ट्रीट, 51st स्ट्रीट, 58th स्ट्रीट, ऐसा बहुत लंबा तक उसका क्रॉस रोड्स आते रहते हैं, और उसमें रथ यात्रा होती है एक बार दिन में, एक बार साल में, मई महीने में होती है। साल भर उस रास्ते पर जो भी गुजरेगा उसको उसका लाभ मिलता है, शास्त्र में लिखा हुआ है। उसी तरह से हम लोग अभी आज शुक्रवार के दिन यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, इसको लगता होगा क्या प्रभु जी आप सुबह सुबह बुलाते हो जॉब करने के लिए, नींद छोड़ के आना पड़ता है और काम से निकल के जाना पड़ता है, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन बुधवार शुक्रवार के दिन आप यहाँ बैठे हो और जो भी कर रहे हो, आपने जप किया होगा, फिर अभी राधा माधव भजन गाया हम लोग ने, अभी कथा सुन रहे भगवान की, इतना सा करने से यहाँ पर जो दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है उसका लाभ यहाँ पर आपको मिलेगा ही, क्योंकि आप तो आज रोज आते हैं यहाँ पर, लेकिन जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी उसका लाभ मिलेगा। जितने मरीज आते रहेंगे, कैंप के बहाने आते रहेंगे, इलाज करने के लिए आते रहेंगे, ट्यूटर्स आएंगे, जो भी आते रहेंगे, इस वास्तु में जो भी व्यक्ति प्रवेश करेंगे उन सबको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए हर मनुष्य को ये कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जार, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है वो बड़ा भाग्यवान जीव है, बड़ा भाग्यवान जीव है वो, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्यों के बाद में इस भूमि में जन्म लेने का मौका मिलता है, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म में हो, मुसलमान में हो, हिंदू में हो, सिख में हो, बुद्ध में हो, या किसी भी धर्म में जाति में जन्म मिलता हो। भारत भूमि का महत्व ऐसा है कि भारत भूमि में अनेक संतों ने, अनेक धर्मों के अनेक संतों ने यहाँ पर जन्म लिया है और भगवान का संदेश जो है वो लोगों तक पहुँचाया है अपना कर्तव्य मानकर। तो इस भूमि में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए आपके जन्म की महिमा क्या है, कि आपका जन्म कितना महान है। भारत यानी जिस देश में एक्चुअली वास्तविक रूप से लोग भगवान के भक्ति में रत रहते हैं, भा यानी भगवान का प्रेम और भक्ति, और रत यानी जिसमें रत रहते हैं, उन लोगों का मिला हुआ देश है वो भारत। जिस देश में गंगा बहती है, गंगा बहती है मतलब क्या होता है, गंगा जहाँ जहाँ बहती है वहाँ वहाँ के लोग जन्म लेने से ही मुक्त हो जाते हैं, गंगा जी को वरदान दिया भगवान ने। तो मैं ये कहना चाहता था कि भारत में जन्म लेने का जो महात्म्य है वो हम सबको पता होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में जब जन्म महान होता है तो उस जन्म की जिम्मेदारी भी आती है। देयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ग्रेट फॉर्चून देन यू व्हेन यू रिसीव यू ऑल्सो हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेट बेनिफिट्स यू रिसीव, ग्रेट ऑनर यू रिसीव, ग्रेट पोजिशन यू रिसीव, यू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जिम्मेदारी क्या है, जन्म सार्थक कोरी कौरव परोपकार, अपना खुद का जन्म का सार्थक करना है, यानी कि स्वयं इस भूमि में जन्म देने के बाद में जो महिमा, जो प्रिविलेज, जो भाग्य हमको उपलब्ध है उसको एनकैश करना है। हाँ, आपके पास कार्ड दिया गया है लेकिन आपने कभी उसको एनकैश ही नहीं किया, तो उसमें करोड़ों रुपये पड़ा हुआ, तो लाभ क्या उसका, जब तक आप जाते नहीं हो और कार्ड से पैसा निकालते नहीं हो तब तक आपको उस पैसे का लाभ नहीं हो सकता है। तो आपका जन्म इतना महान है, लेकिन जन्म होने के बाद में अगर हम लोग कोई टीवी देख रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई नशा कर रहा है, जुआ खेल रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई वे कर रहा है, वो कर रहा है, तो इतना महान जन्म होने के बाद भी कुछ लाभ नहीं मिलेगा, शून्य लाभ। तो सबसे पहले हर एक भारतवासियों को भगवान की भक्ति में आना चाहिए। तो समझना जरूरी है कि भारतवासियों को भगवान के धाम में जाने का एक कार्ड मिला हुआ है, इसको पूरी तरह से आप लोग लाभ देना है। और यहाँ तक रुकना नहीं है, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार, जो भी हमारे संग में आते हैं, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, उन सबके कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। तो आपको लगता होगा कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्या बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो यहाँ बैठ कर अभी कार्य जो किया है आपने वो विश्व के कल्याण के लिए है। अगर विश्व के कोने में टिम्बकटू में जाकर भी आप बैठेंगे ना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवान की महिमा गाएंगे, तो भी पूरे विश्व को उसका लाभ होता है, क्योंकि वहाँ से जो दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है वो अवकाश में चली जाती है। और क्योंकि भगवान का नाम दिव्य है, आध्यात्मिक है, कि नष्ट नहीं होता है समय के साथ, उसका प्रभाव समय के साथ में धन दौलत सेहत शक्ति सब कम हो जाती है, लेकिन भगवान के नाम जो आत्म उत्पन्न किया है वो शक्ति अवकाश में चिरंतन रहती है और उसका लाभ इस विश्व में जो भी लोग रहते हैं उनको मिलता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि अभी भी कलयुग में वर्षा हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, कम कम होते जा रही है, लेकिन हो रही है, अभी भी आपको फल फूल सब्जी पृथ्वी से द्वारा मिल रही है। इसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं अलग अलग धर्मों के लोग बैठ कर भगवान को पुकार रहे हैं, चर्च में, मस्जिद में, मंदिर में, पवित्र क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में, इन सब जगह पर कुछ कुछ लोग, परसेंटेज कम कम होते जा रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो जप कर रहे हैं, भगवान के नाम को पुकार रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, संडे को भगवान को पुकार रहे हैं, दिन में 5 बार मस्जिद में जा रहे हैं, कुछ लोग अल्लाह को पुकार रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, दर्शन आरती कर रहे हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग अपना घर छोड़कर रास्ते पे जा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, भगवान का नाम पुकार रहे हैं, और कुछ लोग बिस्तर में सो रहे हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, उनके कान में भगवान का नाम गिर रहा है। इससे क्या होता है, जीव का कल्याण हो जाता है। जीव चाहे जाने या ना जाने, लेकिन अगर वो भगवान का नाम सुनने का भाग्य रखता है, उसके कान पे भगवान का नाम गिरता है, तो उसका भाग्य उदय होता है, क्योंकि बिना पिछले जन्म में पुण्य किए हुए किसी के भी कान पर भगवान का नाम नहीं गिरता है, इम्पॉसिबल है ये। आप लोग रशिया में जन्म लेंगे या टिम्बकटू में जन्म लेंगे या तो साउथ अफ्रीका के किसी कोने में जन्म लेंगे, जहाँ पर कोई भक्त नहीं पहुँचेगा, जहाँ पर कोई चर्च नहीं है, जहाँ पर कोई मस्जिद नहीं, जहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, ऐसी जगह पर जन्म हो सकता है। ऐसे देश हैं, ऐसे आइलैंड हैं, इतने ऐसे पुराने एकदम क्या कहते हैं उसको, एबोरिजिन्स, मतलब ऐसे जातियाँ हैं जिन्होंने कभी समाज को देखा ही नहीं है, अपने ही बीच में रहते हैं वो। ऐसी जगह पर हरे कृष्णा के लोग पहुँच गए हैं। तात्पर्य क्या कहने का कि जो व्यक्ति समझता है कि मेरा कल्याण किस में है, और जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है जिसमें उसका कल्याण है, वो व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता। वो व्यक्ति जो लाभ उसे मिल रहा है वो दूसरों को देगा। जैसे पैसा किसी को मिलेगा तो किसी को आप कहेंगे नहीं, चुपचाप रखेंगे अपनी जेब में और इन्वेस्ट करेंगे उसको। किसी से बोलेंगे, बीबी को बोलेंगे, बोलना नहीं किसी को, वहाँ चुपचाप रहना है, ना भाभी को बोलना है, ना देवर को बोलना है, ना सिस्टर को बोलना है, चुपचाप रहो। वो भी लॉटरी लगी है, इतना लाभ हो गया है, और लॉस हो गया है तो सबको बोलेंगे आप कि इतना लॉस हो गया हमारा, ऐसा हो गया, इतना नुकसान हो गया, अभी तो अनाज के लिए भी पैसा नहीं है, अभी लोन ले रहा हूँ मैं। लेकिन लाभ होता है तो किसी को बोलते नहीं, क्योंकि वो भौतिक लाभ है, जो इस दुनियादारी का लाभ है। समझो अभी किसी की शादी होती है और आप बोलेंगे कितना दहेज मिला आपको, तो कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप रखेंगे, जितना सोना मिला है, जितना गाड़ी मिली है, बंगला मिला है, चुप रखेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो भौतिक लाभ है, उससे आसक्ति बढ़ती है, उससे लगाव बढ़ता है। लेकिन जो आध्यात्मिक लाभ है, जिस व्यक्ति को जब होता है वो, समझो आप मायापुर यात्रा में गए, आप लोग बरसाना यात्रा में जाके आए हैं सब लोग, हाँ बरसाना में जब आप जाके आए आप लोग, तो यहाँ पर आके आप चुप बैठे क्या एकदम, किसी को नहीं बोला बरसाने में क्या हुआ, किसी को नहीं बोलना है, हाँ बरसाने में क्या क्या हुआ किसी को नहीं बोलना है, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। पूरे हॉस्पिटल में सब जगह बरसाना 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 बरसाना, तो आप जूनियर्स को बोल रहे हैं, आप सीनियर्स को बोल रहे हैं, सीनियर्स बोल रहे हैं हाँ हाँ हम भी गए थे लास्ट ईयर, उनको जाने को नहीं मिल रहा है, अभी एक ही बार जाने को मौका मिला है, हाँ क्योंकि ये दिव्य आनंद है, ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। ये आदमी शेयर किए बिना चुप नहीं रह सकता है, ये आपने अनुभव किया ना अपने आप ही। उसी तरह से भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में जो जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये दिव्य आनंद के लिए किया गया है, आत्मा के कल्याण के लिए किया गया है। आपको बोर भी होता होगा, फिर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। अगर आप आएंगे तो आपका लाभ है, जो मैं आऊँगा तो मेरा लाभ है, आप नहीं आएंगे तो आपका लाभ कैंसिल, मैं नहीं आऊँगा तो मेरा लाभ कैंसिल। जितने लोग आएंगे उनका लाभ होगा, जितना नहीं होगा नहीं होगा। तो ये ऐसा स्वार्थ है जो दिव्य है। हाँ स्वार्थी हम सब लोग हैं, लेकिन हमको दिव्य स्वार्थी बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्वार्थ है जो स्वार्थ को निभाते हुए परमार्थ भी अपने आप हो जाता है, दूसरों का कल्याण अपने आप हो जाता है। जब हम भगवान के बारे में यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं तो इस बिल्डिंग में जितने जीव जंतु हैं, जितने कीटक हैं, वो सबको उसका लाभ हो रहा है। तो भगवान को मानने वाले हैं, भगवान को नहीं मानने वाले, तो सबको उसका लाभ होने वाला है, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। इसमें खर्च भी होता है बाय द वे, हाँ टाइम खर्च होता है, पैसे खर्च होते हैं, अरेंजमेंट करना पड़ता है, सबको बुलाना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है, हमारी कीर्ति मैडम और हमारे रामशरण प्रभु और श्यामकुंड प्रभु, डॉक्टर संजय परब बार बार सबको बुलाते हैं आपको आना है। इसमें उनका कुछ लाभ नहीं है, इसमें उनको कुछ तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, आपको पता होना चाहिए कि हम उनको एक पैसा भी देते नहीं इसके लिए, वो फ्री में काम करते हैं हमारे लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति को स्वयं इस विधि का या इस कार्यक्रम का दिव्य स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे लाभ हो गया है, वो लाभ दूसरों को देना चाहता है। क्योंकि किसी समय हम लोगों को भी ऐसे ही बुलाया गया था, आओ प्रभु जी, मतलब उस समय प्रभु जी नहीं बोलते थे, आओ डॉक्टर शानबाग आप आइए प्रोग्राम में आइए, हाँ सायन के हॉस्टल में किधर किधर लोगों को बुलाते थे, नो रूम नॉक करते करते बुलाते थे, आ जाओ कार्यक्रम है, कोई मंदिर से साधु आ रहा है उनका सुनो बात, कुछ बोलेंगे क्यों आ रहा है उधर हॉस्टल में, लेकिन कुछ लोग जाते थे और फिर वो भक्त बन गए भगवान के, तो उनको पता है कि हमको भी कितना धक्का लगाया गया, तब हम जाकर इसको लाभ ले सके, और तब हम अभी समझ रहे हैं कि उन्होंने कितना महान कार्य किया। अपने मंदिर छोड़कर इतना बढ़िया प्रसाद, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया भगवान का दर्शन सब छोड़ के वो किसी गंदे गवर्नमेंट के म्यूनसिपल्टी के हॉस्टल में आते थे, हाँ वो भी वहाँ से प्रसाद बनाकर पैक करके उधर लेके आते थे, मृदंग करताल। कुछ लोग हंसते थे उनको देखकर, कुछ लोग नहीं हंसते थे, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग अपोज भी करते थे कि नहीं होना चाहिए हॉस्टल में कार्यक्रम। इतना तकलीफ उठाकर वो लोग आते थे, अभी भी जाते हैं सब कॉलेज में, और फिर वहाँ भगवान के बारे में वहाँ पर बता रहे हैं, और फिर वो लोग स्वीकार कर रहे हैं उसको, और उनमें से हम लोग अभी भक्त बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं और भक्त बनने की। तो वो जानते हैं कि कितने कष्ट करने से किसी न किसी व्यक्ति ने, किसी न किसी भगवान के भक्त ने ये मेहनत किया हमारे ऊपर, इसलिए अभी आज हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए दिव्य लाभ ले रहे हैं। धाम से हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है, बरसाना जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता है वहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, हाँ बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा हो रही है, मायापुर साउथ इंडिया और नासिक और उड़पी और जगन्नाथपुरी, ये सब जगह भक्त लोग पहुँच रहे हैं। नहीं तो हम लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर, हम लोग बोलते कुल्लू मनाली कहाँ पर है, दार्जिलिंग किधर है, हाँ शिमला किधर है, कहाँ पर ठंडा हुआ है, लद्दाख में जाते, लेह में जाते थे, यहाँ क्यों जाता था? क्योंकि किसी न किसी भक्त ने हमारे लिए मेहनत किया है, तो उस ऋण को उतारने के लिए, रिस्पॉन्ड देने के लिए, प्रतिसाद देने के लिए ये लोग आपको बुला रहे हैं, आइए प्लीज़। भगवान ने अपना भंडार खोल दिया है कलयुग में, वो लूटने के लिए आप आ जाइए, इसलिए कार्यक्रम है। हाँ नाम प्रभात जागृति है, कभी संध्या जागृति है, कभी उत्सव है, कभी नरसिंह आरती है, कभी मंगल आरती है, कभी शिक्षाष्टकम प्रार्थना है। नाम तो कई प्रकार के हैं और प्रयोजन भी कई प्रकार के हैं, कंटेंट भी अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। जो जीव भगवान को भूल चुके हैं उनको ये न कि न प्रकार भगवान की याद दिलाना है कि ये जीवन जो है ये भगवान के भक्ति के लिए दिया गया है। इस बात को याद दिलाने के लिए ये सारे अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। कुछ लोग यंग गर्ल्स फेस्टिवल करते हैं, आपका कौन सा उत्सव है, आनंदोत्सव, हाँ उसका भी उद्देश्य यही है कि आप लोगों को जवान लड़के लड़कियों को अलग करके उनके लिए अलग करो कार्यक्रम उनके स्टाइल में, लेकिन पर्पस क्या उसका, आप लोगों को भगवान से जोड़ देना है। और केवल विद्यार्थी दशा में रहकर आपको यहाँ पर इस पर अरे क्या करेंगे, भक्ति विधान में एडमिशन मिला था क्या करेंगे, अभी 3 साल तो ये सुनना ही पड़ेगा हाँ भक्ति विधान में एडमिशन मिला है तो इससे बच नहीं सकते क्या करें, स्पिरिचुअल के लेक्चर होगा ही, मैडम कीर्ति आएगी, मैडम किशोरी आएंगे, आपको सुनाएंगे कुछ ना कुछ भगवान के बारे में, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही सब भूल जाना है ऐसा नहीं सोचना है, ये आपकी शुरुआत है। हाँ कुछ लोग ट्यूटर बन के आए हैं, कुछ लोग नर्स बनकर आए हैं, कुछ लोग प्रिंसिपल बनकर आए हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल केयर के स्टाफ बनकर आए हैं, कुछ लोग पैथोलॉजी एक्सरे डॉक्टर बनकर आए हैं, लेकिन अलग अलग टोपी हम लोग पहन के आएंगे फिर भी हमारा जीवन का उद्देश्य एक ही है, ये भूलना नहीं आप, ये जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए दिया है। और जब तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं बैठती है तब तक हम इस दुनिया में धक्के खाते रहेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, जो शादीशुदा नहीं है सोचते होंगे शादी होगी तो कितना आनंद होगा, हाँ जो लोग शादीशुदा हो गए हैं वो शादीशुदा नहीं है उनको देखते हैं तो जो शादीशुदा नहीं है वो सोचते हैं कितने आनंद वाले लोग हैं, कितने भक्ति वाले लोग हैं, कितने खुशी के लोग हैं, कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो आटे दाल का भाव होता है ना रोज का, उसका जो चक्कर होता है, जो कष्ट होता है, संघर्ष होता है, वो सबको पता है, आनंद तो है नो डाउट, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घर का लोन लिया हुआ है, हाँ इतना सारा फीस भरना पड़ता है, सब्जियों को भाव बढ़ रहा है, कितना कष्ट है इस दुनिया में जीने के लिए, केवल एक क्या कहते हैं इज्जत से जीने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर बहुत तनख्वाह मिल रही है तो लगता है काम इतना बोरिंग है कि फ्रस्ट्रेट हो गया, अभी को रिटायर होना है जल्दी, 35 साल और 40 साल के अब व्यक्ति सोचते हैं कि भी मुझे रिटायर होना है, अभी मुझे वो कंपनी में नहीं काम कर सकता मैं, इतना टेंशन है, इतना प्रेशर है, इतना टारगेट रखे बना के रखे हैं, और इतने पाप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, उससे हमको छुटकारा पाना है। इस दुनिया में और अधिक यशस्वी होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो भाग्य में लिखा है मेहनत करके जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और बचा हुआ सारा समय भगवान की सेवा में लगाना है। तो भी हम कह सकते हैं कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य वो है जो इस जीवन में चलते हुए भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको मौका मिला हुआ, उसको एक फैसिलिटी मिला हुआ है। वो नहीं करेंगे तो ये सारा जीवन व्यर्थ है। आप चाहे प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश में, देश के, तो भी आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में जब हम मरेंगे तो यमदूत आपको वैसे ही घसीटेंगे जैसे कि चपरासी को मरने के बाद घसीटते हैं। कोई फर्क नहीं बाय द वे, हाँ, इस दुनिया में आपको इलेक्ट्रिक में दलाएंगे और चंदन की लकड़ी में जलाएंगे और 21 बार तोफ, क्या कहते हैं उसको, तोफ होते हैं ना, तोफ, व्हाट इज दैट कॉल्ड, कैनन बॉल्स, हाँ, मान वंदना, वो 21 बार गोली मारते हैं आकाश में आपके सम्मान में। लेकिन यमदूत आपका सम्मान नहीं देखते हैं। जब जब मृत्यु होती है तो जिसके पाप और पुण्य का हिसाब क्या है, कितना चीटिंग किया हुआ है, कितना पाप किया हुआ है, उसको देखकर उसको घसीटते हैं और घसीटते हुए यमराज के दरबार में प्रेजेंट करते हैं। वही हिसाब किताब। तो इस दुनिया में बड़ा होने से आपका नाम पे एक रोड बन गया, हाँ, अमुक तमुक मार्ग आपके नाम से हो गया, वो चिरंतन काल में रस्ते पर नाम आ रहेगा आपका, लेकिन आप रहोगे नरक में यमदूत के यातना भोगते हुए। ये समझना जरूरी है हमको। बोले फिल्म के स्टार कितने बड़े हैं, उनका नाम कितना बड़ा है, कितना पैसा मिलता है उनको, कितनी इज्जत है, कितने लोग उनके पीछे भागते हैं, कितने फेमस है वो, कितने सुंदर शरीर है उनका, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि उसके अंदर कितना पाप है और उसका पाप का भोग भोगने के लिए वो तड़प रहे हैं। संजय दत्त, जानते हैं सब लोग, पेपर पढ़ते हैं ना आजकल, कोशिश कर रहे हैं कि जेल में एक तकिया मिले, एक पंखा भी मिले उनको, लेकिन जो पाप किया उसका फल तो मिलेगा ही, चाहे वो फिल्म स्टार हो या प्रधानमंत्री हो, कोई बचता नहीं, भगवान के कायदे से कोई नहीं बचता है। कुछ लोग यहाँ तकलीफ भोगते हैं, कुछ लोग मरने के बाद में नरक में जाकर भोगते हैं, और लोग कहते हैं कि अरे इस जन्म के बाद में किसने देखा है, क्या होगा किसने देखा है। लेकिन हमको जानना चाहिए कि इस दुनिया में जीवन जीना बहुत कष्टमय है, क्योंकि ये भौतिक जीवन है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी से भरा हुआ जीवन है ये। इस चक्र से मुक्त होने के लिए हमको सत्संग करना है, और सत्संग करने से हमें इससे बाहर निकलने की चाबी मिलेगी और हम बाहर निकल जाएंगे। इसलिए आप लोग अभी युवा अवस्था में हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपके सामने पूरा जीवन है, और अभी आपको क्वालिफाई होना है, डिग्री प्राप्त करनी है, उसके बाद में काम करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है अच्छे अच्छे पद पर, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। लेकिन जानना जरूरी यह है कि ये सब करते हुए भगवान का अनुसंधान होना जरूरी है। अगर भगवान को भूल कर ये सब काम करेंगे तो निकटस्थ माया जारे झपटिया धोरे, कृष्ण भूलिया जी भोगवांछा करे, कृष्ण भगवान को भूल कर सब लोग इस दुनिया का भोग लेना चाहते हैं, और जैसे ही वो कृष्ण भगवान को भूल कर इस दुनिया का भोग लेना चाहते हैं तो निकटस्थ माया तारे झपटिया धोरे, समझ गया ना अर्थ क्या है उसका, तुरंत माया झपट कर उनको पकड़ लेती है और अपना दंड देती है। और जो भक्ति करता है भगवान की, यमदूत को यमराज ने ऑर्डर देकर रखा है, अगर कोई भगवान का नाम लेता है उसके पास जाना नहीं है आपको, याद रखना, कोई काम नहीं आपको वहाँ पर। एक बार गए थे ऐसे अजामिल के पास, उसने भगवान का नाम लिया था, तो वहाँ पर कोई चार आदमी आए, बहुत पावरफुल थे वो चार आदमियों ने आकर इन चार यमदूतों को परास्त कर दिया, डिफीट कर दिया पूरा, पहले क्या कहते हैं वाद विवाद में डिफीट कर दिया, फिर शक्ति से डिबेट कर दिया, और यमदूतों को ऐसे एकदम निराश होकर लौटना पड़ा, और निराश होकर वो भगवान ने यमराज के पास पहुँचे। बोले यमराज, अरे हमने तो ये सोचा था कि आपका सब जगह राज्य है, जहाँ चाहे हमको लाइसेंस है, पुलिस है ना, पुलिस सब जगह घुस सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके घर में, आपके आंगन में, आपके बेडरूम में उनका लाइसेंस है घुसने का, तो आपने तो हमको लगा था कि आपके अधिकार में, हमारे जीवन में आपका दूत होते हुए हमको सब जगह एंट्री है, और जहाँ जहाँ एड्रेस दिया वहाँ पर घुस सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमको भगा दिया गया, क्या बात है, क्या रहस्य है, बताओ हमको। तो यमराज ने कहा, जहाँ मेरे भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ पर आपको एंट्री नहीं करना है, याद रखना, इसके आगे कभी भी एंट्री नहीं करना, वो आपका एरिया नहीं है, वो वहाँ के लोग आएंगे उनको लेके जाएंगे, आप नहीं जाना वहाँ पर। ये स्वयं यमराज अपने यमदूत को बताते, उसके बाद में यमदूत ने कभी गलती नहीं किया, कभी गया नहीं उधर। हम सबको जानना जरूरी है। हमको अगर इस दुनिया में यमदूत को दूर रखना है, उनके द्वारा दिया हुआ पनिशमेंट को दूर रखना है, तो भगवान का नाम लेना है। ये जो कंठी माला हम लोग पहनते हैं ना, ये कंठी माला जिसके गले में है तुलसी की, उसके पास यमदूत प्रवेश नहीं कर सकता है, उसके पास में नहीं आ सकता है। तो आप बोलेंगे अच्छा यार चलो तुरंत जाओ भक्तिवेदांत के स्टॉल में, तुरंत 30 रुपये की माला खरीद लो पहन लो, नहीं उन लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग इस तुलसी को पहनने के लिए योग्य होने के लिए जो नियम पालन करते हैं, मांस नहीं खाते हैं, नशा नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, केवल प्रसाद खाते हैं, उस गले में प्रसाद के अलावा कोई चीज़ उतरती नहीं है, ऐसे व्यक्ति जब तुलसी माला पहनने के योग्य हो जाते हैं और फिर तुलसी माला पहनते हैं, उनके पास यमदूत आ नहीं सकते। और जो फैशन के रूप में अगर 30 रुपये की माला पहन के पहनेगा ना, आपके पीछे हाथ धो के लग जाएंगे। कारण क्या है उसका? क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज़ का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है, उसका लाभ खींचने का प्रयास कर रहा है अपनी ओर बिना योग्य होते हुए। जैसे आप अभी कॉलेज में आए नहीं और बन गए नर्स कहीं पर, तो आपको अरेस्ट करेंगे ना, एक दिन जेल में डालेंगे ना कि नहीं डालेंगे? कोई डॉक्टर है बिना डॉक्टर बना हुआ, एक कंपाउंडर था 10 साल डॉक्टर के पास, फिर अपना दवाखाना खोल दिया उसने, फिर वो एक दिन अपने आप को जेल में पाएगा, कुछ दिन प्रैक्टिस करेगा चीटिंग करते हुए, एक दिन पता चलेगा, रेड पड़ेगा, सर्टिफिकेट मांगेंगे, सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो वो जेल में रहेगा सीधा स्ट्रेट। इस तरह से योग्यता ना होते हुए बहुत लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, चीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो चीटिंग बहुत दिन टिकता है क्या? नहीं, खत्म हो जाता है चीटिंग। अधिक देर वो ढोंग हम लोग नहीं जता सकते हैं। उसी तरह से इस तुलसी माला को पहनने के लिए आपको नॉलेज मिला है अभी कि ऐसा ऐसा है, और ये नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। मांस छोड़ना, नशा छोड़ना, जुआ छोड़ना पॉसिबल है, हम लोग ने किया है तो आप लोग भी कर सकते हैं। हम लोग कोई संत लोग नहीं है बाय द वे, हाँ आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए इसका मतलब ये नहीं कि हम संत हैं, हम लोग आप में से ही हैं, वी आर वन ऑफ यू ओनली। हम लोग उसी रास्ते से भाग रहे हैं जिसमें आपको लेकर भागना चाहते हैं। केवल गुरु महाराज की आज्ञा से ये हमको बताने का आज्ञा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, केवल नॉलेज दे रहे हैं आपको कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा लाभ मिलेगा, हम लोग भी ले रहे हैं, आप भी ले लो। अरे देखो वो भंडार खुला हुआ है, धन बट रहा है, हम भी ले रहे हैं, आप भी ले लो, इसी भावना से आपको दे रहे हैं। ये भावना से नहीं दे रहे कि हम कोई बड़े हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और आप लोग नौसिखिया हो, बच्चे हो, इसलिए हम आपको दे रहे हैं, ले लो उसको, ऐसा भाव से नहीं दे रहे। ये नॉलेज आपको इस भाव से दे रहे हैं कि हमें मिला है, हमने भी इसका लाभ लिया है और कुछ कुछ उसकी महिमा हमको प्राप्त हो चुकी है, हम समझ चुके हैं, आप भी लीजिए। चाहे विद्यार्थी के रूप में आए हो, ट्यूटर के रूप में आए हो, कर्मचारी के रूप में आए हो, भक्तिवेदांत के एम्प्लॉय के रूप में आए हो, डॉक्टर के रूप में आए हो, ले लो उसको। काम करते हुए कहाँ मिलता है ये ऐसा भाग्य कि काम करते हुए, पढ़ते हुए, सीखते हुए, नौकरी करते हुए इस चीज़ का लाभ कहाँ मिलता है? नोबडी केयर्स फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ, एवरीबडी वॉन्ट्स मनी फ्रॉम यू। हाउ टू एक्सप्लॉइट, कैसा शोषण करके आपसे अधिक से अधिक लाभ लेना है और कैसे खुद की जेब भरनी है, इसलिए पूरी दुनिया बनी हुई है, कोई आपका कल्याण का सोचता नहीं है। लेकिन एक हमारे प्रभुपाद जी थे, उन्होंने खुद का स्वार्थ त्याग करके विश्व के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया और लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों का जीवन भगवान के रास्ते पर डाल के छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, सबको वीज़ा दिया भगवान के धाम का, जाना आपको है अभी, लेकिन वीज़ा मिलना आसान नहीं है, आपको मालूम है ना, आपके पास पैसा भी होगा ना बहुत सारा तो भी किसी परदेश का वीज़ा नहीं मिलता है, उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और वीज़ा मिलने पर भी आप वहाँ पहुँचे ऐसा नहीं होता है, वीज़ा मिलने पर ही आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टिकट निकालना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, छुट्टी निकालनी पड़ती है, फिर आप उस देश में प्रवेश कर सकते हो। और वो भी कैसा है, वीज़ा ख़त्म होने पर वापस लौट के आना पड़ता है ना, 3 महीने का मिलता है, 6 महीने का, 10 साल का मिलता है, 10 साल के बाद भी फिर लौट के आना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने आपको ऐसा वीज़ा दिया है कि एक ही बार आप भगवान के धाम में प्रवेश करोगे, दोबारा यहाँ लौट के नहीं आओगे। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, मेरा धाम ऐसा है, भगवान कहते हैं कि वहाँ पर एक बार जो पहुँचता है उसको दोबारा यहाँ पर नहीं आना पड़ता है, दोबारा जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा कष्ट भोगने के लिए यहाँ पर नहीं आना पड़ता है। ऐसा शरीर जिसमें बीमारी है, बदबू है, गंदगी है, वो शरीर में दोबारा आकर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ की देखो कितनी धूप पड़ रही है, अभी वृंदावन जाओगे तो आप केक बन जाओगे इतना टेम्परेचर है वहाँ पर। यू विल गेट कुक्ड, यू विल गेट रोस्टेड, यू विल गेट क्या कहते हैं उसको, ओवन में क्या होता है बेक्ड इतनी गर्मी है, सहन नहीं होती है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, अच्छा से अच्छा आदमी परेशान हो जाता है। और सर्दी में हम जनवरी में गए थे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ 0 डिग्री, सुबह बिस्तर से बाहर निकलने को नहीं आता है। और पानी कितना भी गर्म डालेंगे शरीर पर तो समझते नहीं क्या हो रहा है, इतनी ठंडी। और किस देश में तूफान आ रहा है, किस देश में आंधी आ रही है, हाँ कतरीना और क्या क्या नाम है उसके, भयंकर तूफान में लाखों लोग एक साथ मर रहे हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कितना कष्ट है जीवन के अंदर। और लोग फिर भी सोचते हैं कि नहीं नहीं हम लोग इसमें खुशी ढूंढेंगे। अरे करेले के पेड़ पर आम मिलेगा क्या आपको, आम का सीजन है तो आप आम के पेड़ पे जाओगे करेले के पेड़ पे जाओगे? नहीं नहीं, करेले के पेड़ पे अभी हम लोग राइट दिशा में गए वहाँ पर नहीं मिला, अभी लेफ्ट में जाओ वहाँ मिलेगा। अरे करेले के पेड़ पे लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सब किसी भी दिशा में जाओ, करेला ही मिलेगा, क्योंकि पेड़ करेले का है, ध्यान रखना इस बात का। जिस लोक में आनंद भगवान ने डाला ही नहीं है उसमें आनंद ढूंढने से लाभ क्या है? जीसस क्राइस्ट क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि इस दुनिया में अगर आपको खुश होना है, ऐसे कोई लोग हैं दुनिया में खुश नहीं होना है, हाथ ऊपर करो, एनीबॉडी हु डजंट वांट टू बिकम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, ये सबको खुश होना है। इस दुनिया में अगर खुश होना है तो यीशु मसीह कहते हैं कि इस दुनिया में खुश होने का प्रयास करना छोड़ दो, डोंट ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस हियर, दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू बिकम हैप्पी। फिर वो कहते हैं कि फिर भगवान का नाम लो, जो अपने दिव्य धाम में बैठे हैं उनका नाम पुकारो, उनका नाम पुकारते ही आपको वो आनंद मिलेगा जो इस दुनिया का नहीं है, किसी और दुनिया का है, इम्पोर्टेड हैप्पीनेस। और आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ के नहीं हो, यू डोंट बिलोंग हियर, आप वहाँ के हो, वहाँ से यहाँ गिर गए हो गलती से, अभी दोबारा लौट के जाओ, अपने पिताजी के घर में लौट के जाओ। तो यही रहस्य जो है कि कैसे अपने पिता के घर में दोबारा लौट कर जाना है और कष्ट से मुक्त होना है, यही समझने के लिए ये सब कार्यक्रम है। इसी को बताने के लिए प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़े मंदिर खोले। अब एक दिन वो जुहू मंदिर में, वो जुहू बीच पे चल रहे थे मॉर्निंग वॉक, हाँ तो एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपने इतना बड़ा करोड़ों का मंदिर क्यों बनाया है, मार्बल का मंदिर क्यों बनाया है? तो उन्होंने, उनके हाथ में डंडा था, वो डंडा लेके चल रहे थे, तो डंडा लेके उन्होंने ऐसा रेती में डाला, ठाक कर, उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठकर भी भगवान के बारे में आपको बता सकता हूँ, आप यहाँ सुनने को आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि मैं रेती पर बैठ कर अगर बोलूँगा भगवान के बारे में तो कोई सुनने को नहीं आएगा, लेकिन मार्बल मंदिर बनाया तो जरूर देखने के लिए आएंगे, वहाँ पर सुनेंगे, अरे वाह क्या बढ़िया मंदिर बनाया, अरे बैंगलोर में कितना बढ़िया मंदिर पहाड़ पर बनाया, अरे लॉस एंजलिस में कितना बढ़िया मंदिर बनाया है, अरे न्यू वृंदावन में तो 3,000 एकड़ में कितना बढ़िया कम्युनिटी बनाया, अरे मायापुर में कितने लोग गए आप में से, मायापुर में कुछ लोग यहाँ से मायापुर गए हुए हैं, आनंद आया ना, देखिए आपको मंदिर याद आते ना बार बार, कब जाएंगे वहाँ पर फिर 2 दीपदान करने के लिए। अभी तो आपने जो देखा है उससे 1,000 गुना बड़ा मंदिर बन रहा है, वो आप और देखने जाएंगे ना ऐसे खड़े 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 ऐसे तो पीछे गिर जाएंगे इतना ऊंचा है वो, दुनिया से सबसे बड़ा मंदिर है वो। क्यों बना रहा है उसको इतना? क्योंकि जब दुनिया के मैप में आएगा ना वो मंदिर, अरे ये तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है, चलो देखने को जाएंगे क्या है उसके अंदर, तो वहाँ जाएंगे तो फिर भगवान के बारे में शिक्षा प्राप्त करेंगे। लोग अपने आप अभी यहाँ बैठ गए ना, सब सड़क पे जाके बैठ गए, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया और राधे कृष्ण का जप करने लगा, कोई नहीं आएगा मेरे पास, तो लोगेंगे भिखारी होगा शायद आदमी क्योंकि रोड पर खाली बैठ कर भिखारी ही गाते हैं और कोई नहीं गाता है। लेकिन अगर बैनर लगाया जाए, मंदिर में एडवर्टाइजमेंट किया जाए, बड़ा स्टेज बनाया जाए, लाइटिंग अरेंजमेंट, रिपोर्टर्स और लाइट्स और साउंड सिस्टम लगाया जाए, बोले अमुक तमुक फलाना साधु आ रहे हैं तो जनता आ सकती है, अरे भाई कौन है आदमी इतना बड़ा, इतना सारा सिक्योरिटी, रोड साफ करके रखा है, इधर बैरिकेडिंग बना के रखा है, इतना व्यवस्था, इतना बैनर्स, इतनी पत्रकार लोग घूम रहे हैं, ऊपर क्या है क्या आज उधर, तो जाएंगे आप देखने के लिए, कुछ ना कुछ है उधर आज। बात वही है, वही हम आत्मा नहीं है, हम आत्मा है शरीर नहीं है, यही बताने वाले हैं वो स्टेज पर भी और रोड पर भी। लेकिन रोड पर सुनने को कोई आता नहीं है, इसलिए स्टेज पर आके बैठना बैठकर बोलना पड़ता है, यही फर्क है। तो आपको बताने के लिए जो एसेंस है, संदेश है, वो वही है कि हम लोग आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, और इस दुनिया में हमारा नेचुरल पोजिशन नहीं है। हमको सबको इस जीवन के अंत में ये मौका मिला है कि इस जीवन के अंत में हम भगवान के धाम में पहुंचना है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वही बताना है, और वही इस जागृति के प्रोग्राम में बताएंगे आपको, हाँ भगवान के बारे में बताएंगे। तो भगवान कितने महान हैं, कितना टाइम बचा अपने पास, अभी टाइम तो हो गया है, फिर भी संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं। पिछले शुक्रवार को नरसिंह भगवान की जयंती थी, नरसिंह भगवान का जन्म हुआ था उस दिन। हाँ, ये जो कहानी नरसिंह भगवान की है, ये स्वयं भगवान जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और उन्होंने 18 साल जगन्नाथपुरी में निवास किया, पहले 24 साल मायापुर में जहाँ पर हम लोग ने यात्रा किया है, फिर बाद में जो 6 साल थे वो पूरा इंडिया में भ्रमण किया उन्होंने, फिर लास्ट 18 साल इसको अंत लीला कहते हैं, वो 18 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए। और जगन्नाथपुरी में 18 साल जब बिताए उन्होंने, तो वो हर रोज़ दोपहर को एक मंदिर में जाया करते थे, सुबह वो हरिदास ठाकुर को मिलते थे 2-3 घंटा, फिर भोजन के बाद में वो टोटा गोपीनाथ नाम के मंदिर में जाते थे। जगन्नाथपुरी की यात्रा इसमें से कितने लोगों ने की है, जगन्नाथपुरी में हम लोग उस मंदिर में गए थे ना जहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं पाँव मोड़कर, ऐसा दुनिया में खाली एक ही मंदिर है जहाँ पर भगवान ऐसे पाँव फोल्ड करके बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका भक्त जो है वो बीमार हो गया था, बुढ़ा हो गया था, उसको खड़ा होने की शक्ति नहीं थी, वो माला बनाकर भगवान को पहनने की कोशिश कर रहा है कि उसको खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। 90 ईयर्स के गदाधर पंडित कोशिश कर रहे हैं, तो अपने भक्त की भक्ति को देखकर भगवान जो खड़े थे वो बैठ गए नीचे, पाँव मोड़कर बैठ गए, और अभी भी बैठे हुए क्योंकि अपने भक्त से सेवा लेने की उनकी इच्छा थी, क्योंकि बड़े प्रेम से उनको वो सेवा दे रहे थे। उनकी इच्छा थी कि मैं ये माला भगवान को पहनाऊँ रोज़, नहीं हो रहा है उनसे, तो वहाँ बैठकर भगवान बैठ गए, और फिर उन्होंने उसके आगे अपने मौत तक भगवान को बैठ के श्रृंगार किया। भगवान भी बैठे हुए हैं और भक्त भी बैठा हुआ है, ऐसी अद्भुत जगह है वो। तो उस जगह पर जब गदाधर पंडित रहते थे पहले, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण जो है वहाँ जाते थे और उनके मुख से रोज भागवत सुनते थे। और कौन सी कथा सुनते थे, नरसिंह भगवान की। एक बार कथा सुनने के बोलते दोबारा सुनाओ, 3 बार सुनाओ, 4 बार सुनाओ, और नाचते थे, और नाचते वो इस कथा को सुनते थे कि कैसे भक्त ने केवल बताया कि भगवान इस खंभे में है, तो कैसे एक क्षण में भगवान उस खंभे में प्रकट हो गए, तत्क्षण, ऑन द स्पॉट, इंस्टेंटली। ऐसे नहीं कि 2 घंटे के बाद में आए, उन्होंने फ़ोन कॉल किया फिर आ रहे हैं, भगवान मैं गलती, मैं डिफिकल्टी में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, भगवान आ जाइए, हमें आ रहा हूँ, गरुड़ को बुलाया अभी मैंने, वो आ रहा है धीरे धीरे, 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, तब तक सह लेना। नो, भगवान के लिए उन्होंने कहा कि भगवान कहाँ है तुम्हारे, बोला सब जगह पर है। पहले बोले कि इतनी हिम्मत तुमसे कहाँ से आ रही है, इतनी हिम्मत तुम में कहाँ से आ रही है, बोले जो हिम्मत जहाँ से आप में आ रही है उसी जगह से मुझ में भी आ रही है, बोले ऐसे घुमा घुमा के बात मत करो, डायरेक्ट बात करो, कहाँ से आ रही है शक्ति, बोले विष्णु से आ रही, सबको शक्ति देने वाले। अच्छा कहाँ है तुम्हारे विष्णु, मैं उनको अभी ख़त्म करना चाहता हूँ, बोले वो तो सब जगह पर है। सब जगह मतलब कहाँ पर है, बोले कण कण में है, हर वस्तु में हर जीव में। तो यहाँ वहाँ देखा, वो तो पागल था ना, पूरा नशे में गुस्से में चूर था वो, यहाँ वहाँ देखा, बोले इस खंभे में है क्या, हाँ जस अगर सब जगह पर है तो खंभे में भी है। अच्छा अभी देखता हूँ तुम्हारे भगवान तुम्हें कैसे बचाते हैं, मैं भी खंभे को चकना चूर कर दूंगा। तो जैसे ही उसका हाथ की मुट्ठी उस खंभे को लगी, तो अचानक खंभा चकनाचूर हो गया और इतनी भयंकर गर्जना हुई खंभा टूटने की और अंदर के व्यक्ति की आवाज़ की, कि वो आवाज़ जो है वो स्वर्ग लोगों को काट तक ब्रह्मा लोक तक पहुंच गई, और स्वर्ग लोगों में ब्रह्मा लोक में ऐसा लगा कि प्रलय आ रहा है, पता नहीं इतनी भयंकर ध्वनि कहाँ से आ रही है। सब डर गए, बोले सभी भी विश्व का समाप्ति का काल आ गया है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, उस खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। दो क्षण के लिए हिरण्यकश्यप डर गया, अरे ये तो अद्भुत जीव है, देखा नहीं कभी ऐसा जीव, आधा सिंह आधा मनुष्य और ऐसी गर्जना कर रहा है जो हृदय में थरकाप उत्पन्न कर रहा है। फिर भी अहंकार की वजह से उसने शस्त्र उठाया और युद्ध किया भगवान के साथ। उस समय दोपहर का समय था ना, 12 बजे के आसपास भगवान मध्यान्ह के समय आए थे और वरदान तो मिला था कि दिन में नहीं मरेंगे, शाम को नहीं मरेंगे, बड़ा लिस्ट था उनका, एप्लीकेशन दिया था, ब्रह्मा जी ने सैंक्शन कर दिया था उसको, अप्रूव्ड। हाँ, दिन में नहीं मरेंगे, शाम को नहीं मरेंगे, घर में नहीं मरेंगे, घर के बाहर नहीं मरेंगे, आकाश में नहीं मरेंगे, जमीन पर नहीं मरेंगे, पानी में नहीं मरेंगे, मनुष्य से नहीं मरेंगे, ब्रह्मा के द्वारा जितनी जीव निर्माण किए गए हैं उसके द्वारा नहीं मरेंगे, शस्त्र से नहीं मरेंगे, अस्त्र से नहीं मरेंगे, जितना भी मृत्यु हो सकता है ना सारा वो लिस्ट बना दिया था उसने, ये सोच कर कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। देखो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाया मैंने कि कोई काट नहीं सकता है इस लिस्ट को, मतलब मैं अमर ही हो गया, ऐसा सोच कर उसने लिस्ट दिया था। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मेरे ही भक्त ने ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो उसका भी मान रखना मेरा कर्तव्य है। तो दोपहर से शाम तक क्या किया, केवल खिलवाड़ किया। आपके घर में बिल्ली है, बिल्ली देखा आपने, बिल्ली को और बिल्ली का पिल्ला देखा है अपने घर में, एक कागज़ का कपड़ा ले लो ऐसा कागज़ का, उसको गोल बना दो, उसको फेंक दो उसके सामने, तो वो दिन भर बिल्ली का बच्चा जो है वो कागज़ के गोल से इधर उधर खेलता रहेगा, लात मारेगा फिर यहाँ आएगा फिर वहाँ से लात मारेगा इधर करेगा, फुल टाइम खेलता रहेगा। देखा है ना आपने बचपन में, हाँ मैंने बहुत मज़ा लिया उसका, मैं हमेशा बिल्ली के सामने कागज़ डाल के ऐसा बैठा था देखते हुए, वो बहुत अच्छा खेलती थी बच्ची। ऐसा ही कुछ खिलवाड़ भगवान हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप के साथ में किया, जस्ट टू पास टाइम, क्योंकि शाम तक उनको रुकना था ना, शाम तक ऐसे खिलवाड़ किया, कभी लगा हिरण्यकश्यप को कि मैं जीत रहा हूँ, कभी भगवान ने उसको हावी कर दिया, कभी वो भगवान पे हावी हो गए, ऐसा ही उसको लगा कि मैं विजयी हो रहा हूँ, बहुत गर्व से आगे बढ़ने लगा, फिर उसको दबाया और जैसे ही शाम का मौका हुआ ना वो सब युद्ध भगवान ने बंद कर दिया तुरंत, ऐसा उठाया ठट्ठे से और उठाकर वो दहलीज पे गए, दहलीज मतलब उम्बर मतलब घर के और बाहर के बीच में होता ना वो बॉर्डर, उधर गए, वो कोई कुर्सी उसे रखा नहीं, अरे कुर्सी लेके आओ मेरे को बैठना है इधर, ऐसा नहीं, एक पाँव मोड़ लिया, एक पाँव के ऊपर उसी पे कुर्सी बना लिया, उसको डाल दिया उसको और फाड़ दिया उसको, दो हाथ से पकड़ा कड़क, दो हाथ से उसका एब्डोमेन विदाउट स्कैल्पेल फाड़ दिया, नो एनेस्थीसिया, टाइम नहीं था उधर बुलाने के लिए, कोई डॉक्टर शमाशा है क्या उधर, ऑपरेशन करना है जल्दी बुलाओ, नो सर, उनका ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के करना था। दो हाथ से फाड़ दिया और दो हाथ अंदर से इंटेस्टाइन निकाल के गले में पहना और फिर मर गया वो, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, उन्होंने उसके डायफ्राम के अंदर हाथ डाला और हार्ट को पकड़ा और तोड़ के, ऐसा हम आम तोड़ते ना पेड़ से, सब तोड़ के फेंक दिया जमीन पर ऐसे और फिर लात मारकर उसको अपने से अपने जहाँ बैठे थे वहाँ से फेंक दिया उनको नीचे। इतना क्रोध क्यों था उनके अंदर, क्योंकि उसके भक्त जो है भगवान के भक्त प्रहलाद, उसने बहुत कष्ट दिया था, एक पिता होने के बावजूद भी एक शत्रु मानकर मरणांतिक यात्रा जैसे कष्ट दिया था। तो ये कथा चैतन्य महाप्रभु ने सैकड़ों बार सुनी, स्वयं भगवान होते हुए भी भक्त के रूप में आए तो गदाधर पंडित के मुख से चैतन्य महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ के मंदिर में सैकड़ों बार ये नाचते हुए कथा सुनी, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, क्योंकि ये कथा हम सबको विश्वास दिलाने वाली है कि आप संकट में हो तो उनको पुकारो, विश्वास हो या नहीं हो याद तो करो उनको, फिर देखो आपके संकट में आपको कैसा लाभ होता है, कैसे प्रोटेक्शन मिलता है। इस्कॉन के अंदर ऐसा इतिहास है कि जब जब संकट आया तब तब प्रभुपाद जी के कहने से उन्होंने नरसिंह भगवान को याद किया और वो संकट से मुक्त हो गए, अनंत कहानियाँ हैं उसकी। आप लोगों को हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे घटनाएँ होती है, केवल श्रद्धा चाहिए बस आपके अंदर। प्रहलाद के अंदर क्या शक्ति थी, श्रद्धा की शक्ति थी, उनको पता था कि वास्तव में भगवान सब जगह पर है और भगवान को भी मजबूर होना पड़ा कि मेरे भक्त के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी श्रद्धा की शक्ति है कि मैं सब जगह पर हूँ और वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे आना होगा वहाँ पर, हाउ कैन आई नॉट कम, इतनी श्रद्धा से इतना छोटा सा बालक बोल रहा है इतने बड़े पिताजी के सामने जो तलवार लेके खड़ा है, कहाँ है तुम्हारे भगवान, मैं अभी उनको मार देता हूँ। तो वो कह रहा है इस खंभे में, तो वो खंभे में प्रकट हो गए। ऐसे हमारे भगवान हैं, क्या श्रद्धा है तुम्हारी, इतना रिस्पॉन्ड देंगे आपको। तो श्रद्धा बटोरने का हमारा जीवन है ये, वो श्रद्धा इकट्ठा करने के लिए जीवन दिया है कि वो है और वो आएंगे और वो बचाएंगे। वो श्रद्धा होना चाहिए और वो श्रद्धा श्रील प्रभुपाद जैसे संतों के संग में प्राप्त होती है। जो श्रद्धा प्राप्त कर चुके हैं उनके संग में ऐसी श्रद्धा प्राप्त होती है। अगर आप ऐसे श्रद्धालु लोगों के संग में बैठते हैं तो आपको भी श्रद्धा आएगी। और अगर वो आप कहानी सुनते हैं श्रद्धा वाली प्रहलाद की, कि एक बालक था 5 साल का, उसके अंदर कितनी श्रद्धा थी, बिना डरे हुए अपने पिताजी को तलवार लेके सामने खड़े हैं, ऐसे पिताजी को भी बिना डरे हुए वो कह रहा है कि हाँ यहाँ पर है वो, और प्रकट हो गए वो, और मरना पड़ा हिरण्यकश्यप को, मानना पड़ा कि हाँ ये जो कह रहा था वो सही है, वो इधर से आए। ऐसा नहीं हुआ कि वो कहा और नहीं आए, बोले किधर है तुम्हारे भगवान, भगवान तुम्हारे तो है ही नहीं, नहीं भगवान आए। और हिरण्यकश्यप को मरने के समय ये मानना पड़ा कि भाई आए वो, मार दिया मुझे उन्होंने, ब्रह्मा जी के सारे कंडीशन को टिक किया उन्होंने, सब है ना, सब कुछ कंडीशन, देखो दिन में भी नहीं है और रात में भी नहीं, संध्या काल में, घर में भी नहीं है और बाहर भी नहीं, घर के बीच दहलीज पे, हाँ आकाश में भी नहीं है और ज़मीन पर नहीं, पानी में नहीं, बीच में हवा में उनको मारा उन्होंने, और शस्त्र भी नहीं, कोई तलवार नहीं, पहले युद्ध किया तलवार गदा से, सब फेंक दिया बाद में उन्होंने, केवल शरीर के एक हिस्से से नाखून से फाड़ दिया उनको, और मनुष्य भी नहीं है और देवता भी नहीं, वो बताया भूल गया मैं, मनुष्य नहीं, देवता नहीं, राक्षस नहीं, दानव नहीं, दैत्य नहीं, कोई नहीं होना चाहिए। वो मनुष्य भी नहीं थे, मानव भी नहीं थे, और जानवर भी नहीं थे, आधे सिंह और आधे मनुष्य थे। ऐसा अद्भुत रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सारी कंडीशन को रखते हुए, मान रखते हुए मार दिया उन्होंने उनको। मरना पड़ा हिरण्यकश्यप को, इतना तपस्या किया 1000 साल तक, एक अंगूठे पे खड़ा रह के 1000 साल तपस्या किया, क्या लाभ हुआ, जीरो, क्योंकि भगवान को भूलकर, भगवान को शत्रु मानकर उन्होंने तपस्या किया था, खुद को बड़ा करने के लिए, खुद को भगवान बनाने के लिए, लेकिन हार गए। ऐसे सब लोग, बड़े बड़े महारथी लोग जो खुद के लिए काम करते हैं, खुद को बड़ा करने के लिए भगवान को भूलकर, वो सबको समाप्त होना पड़ता है, याद रखना इस बात को, कोई नहीं बचता है भगवान के सामने। इतना बड़ा कंस था, इतना बड़ा रावण था, इतने बड़े बड़े वर्णन है उनके, क्या उनका गर्ग संहिता में तो कंस का महिमा, दिग्विजय का महिमा दिया है, इतना पराक्रमी था वो, लेकिन भगवान ने बालक के रूप में जन्म लिया, एक मुक्का मारा छाती पे, मर गए वो, क्योंकि मरना ही है, जो भगवान से विद्रोह करता है उसको नष्ट होना ही है। लेकिन प्रहलाद जैसा 5 साल का लड़का, हाँ दुर्बल लगता है बेचारा, वो शक्ति नहीं उसके पास, आतंक से मजबूर है वो, उसके ऊपर इतना आतंक किया गया है, कष्ट दिया उसको, ऐसा व्यक्ति के बाल भी बाका नहीं कर सका हिरण्यकश्यप, अपने बड़े बड़े रक्षकों के सहायता से एक बाल भी बाका नहीं कर सका वो 5 साल के बालक का, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया वो, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा 5 साल का बालक का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता हूँ मैं, इतनी बड़ी सेना के साथ, इतने शस्त्र के साथ, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। जाको राखे साइया मार सके न कोई, जब कृष्ण भगवान का, परम भगवान का भक्त होता है उसको दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी छू नहीं सकती, और दुनिया की बड़ी बड़ी से ताकत हो अगर भगवान के खिलाफ हो तो उसको चकनाचूर नष्ट होना ही है, ये हम इस कहानी से समझ सकते हैं। खैर नरसिंह भगवान की याद आपको सबको देने का मेरा विचार था आज का, कि नरसिंह भगवान की स्मृति से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी पीड़ा नष्ट हो जाती है और जीवन में आनंद आता है, विश्वास आता है। एक छोटे से बालक ने भी उनकी याद किया संकट के समय, डर के नहीं, विश्वास के साथ याद किया, और भगवान ने उसको रिस्पॉन्ड दिया, इसकी कथा आई। तो आप भी हृदय से उनको पुकारेंगे तो आपको भी रिस्पॉन्ड करेंगे वो, आप पूछ के तो देखो, बुला के तो देखो, अगर हम झूठ कह रहे हैं तो आप साबित कर सकते हो कि हम झूठ हैं, लेकिन हमें पता है कि हम झूठ नहीं कह रहे हैं, विश्वास के साथ कह रहे हैं, आपको संकट आता है आप उनको पुकारो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, केवल संकट के समय मत पुकारो, बाकी टाइम भी पुकारो, मतलब सेल्फिश मत बनो कि सुख दुख में सिमरण करे सभी, सुख में करे न कोई, लेकिन कबीर आगे कहते हैं जो सुख में स्मरण करे उन्हें दुख काहे को होए। इसलिए जब सुख है शांति है तब उनको याद करो, और जब कष्ट आ गए तभी भी याद करो। लेकिन हो सकता है कि सुख में करेंगे तो दुख में फिर दुख आएगा ही नहीं, दुख बुलाने की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हर समय याद करो उनको, हर समय उनका नाम पुकारो, उनके नाम का जप करो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे ट्यूटर हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, आदमी हो, उनका नाम पुकारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, भक्त के श्रद्धा की जय हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।